हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 131। रुद्र ने भी सिर हिलाया। वो समझ गया था कि करण उस तरफ देखने जा रहा है और जो कुछ भी होगा करण उसे संभाल लेगा। करण उस तरफ देखने के लिए बढ़ गया। रुद्र वहीं रुक गया और शिविका का नंबर डायल करने लगा। करण वहां पहुंचा। उसने देखा कि कॉमन ग्रीन रूम में दो लड़कियां एक दूसरे पर चिल्ला रही थीं। उनमें से एक लड़की हाथ में अपनी ड्रेस पकड़े हुए खड़ी थी और बहुत परेशान लग रही थी। दूसरी लड़की थोड़ी गुस्से में थी। करण गेट पर पहुंचा और गेट पर खड़ी इंस्ट्रक्टर मेघा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहां पर? ये इतनी तेज चिल्लाने की आवाज किसने चिल्लाया था अभी? करण की तरफ देखते हुए वे सब थोड़ी हड़बड़ा गईं। मेघा आगे आकर बोली, सॉरी करण, ये दोनों लड़कियां हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी अभी। मेघा ने जैसे तैसे बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। उसके बाद टालने की कोशिश करते हुए देखकर करण ने कहा, संभाल लोगी अच्छी बात है, लेकिन बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ, हो क्या रहा है यहां पर? इतना बोलते हुए करण दरवाजे से अंदर आया। मेघा भी उसके पीछे आई। उसने देखा कि सामने खड़ी लड़की ने करण की तरफ देखकर शिकायत करते हुए कहा, सर ये आयुषी मुझसे जलती है, इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर ये कॉफी गिरा दी, अब मैं क्या पहनूंगी? आज रात के इवेंट के लिए ये मेरी ड्रेस थी। उसके सामने वाली लड़की ने दूसरी लड़की पर इल्जाम लगाया। मेघा ने उन दोनों को डांटते हुए कहा, श्वेता आयुषी बस करो तुम दोनों, इस तरह लड़ने से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता, और आयुषी ने तुमसे कहा ना कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो कॉफी गलती से गिर गई, मैं तुम्हारी ड्रेस का अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगी। मेघा की बात सुनकर श्वेता ने कहा, लेकिन मैम आयुषी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, आपको उसकी चालाकियां नहीं दिखती क्या? आपको पता है कल मेरा एक इयररिंग नहीं मिल रहा था, वो भी इसने ही छुपाया होगा, क्योंकि आज सुबह ही मुझे ये इसके सामान के पास पड़ा हुआ मिला, और आज मेरी ड्रेस के साथ जरूर ये सब ये लड़की ही कर रही है, इसे मेरी जगह पर आना है। श्वेता टॉप 3 मॉडल्स में से थी जो हर्षिता के साथ परफॉर्म करने वाली थी, जबकि आयुषी उन बैकअप मॉडल्स में से थी जो बैकग्राउंड में सिर्फ ज्वेलरी पहनकर खड़ी रहेंगी। टॉप 3 मॉडल्स और हर्षिता को कंपनी की सबसे महंगी और डिजाइनर ज्वेलरी दी जाएगी। इस वजह से उन दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, क्योंकि पहले आयुषी को श्वेता की जगह पर लिया जाना था, लेकिन बाद में श्वेता को उसकी जगह पर ले लिया गया। आयुषी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और कॉफी मुझसे गलती से गिर गई, शायद किसी ने धक्का दिया था, मैंने देखा नहीं, और मैंने ये बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया, और इसे भी तो अपनी ड्रेस निकालकर रखने की क्या जरूरत थी, हम सबकी ड्रेस तो अभी भी पैक है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे यहां रखने की जरूरत पड़ गई, ये जानबूझकर मुझसे लड़ाई करना चाहती है। उन दोनों लड़कियों की फाइट देखकर करण ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर वहां पर ही साइड में खड़ी हर्षिता की तरफ देखा। हर्षिता के लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया था और वो इन सब बातों से अनजान थी, इसलिए वो करण की कोई मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन करण ने खुद ही आगे आते हुए उन दोनों लड़कियों की तरफ देखकर बोला, ये सारी बचकानी हरकतें बंद करो, और तुम दोनों की वजह से अगर इवेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो समझ लेना तुम दोनों का करियर खत्म हो जाएगा और फिर आगे तुम्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करो और एक दूसरे के साथ आज के इवेंट में इस तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद करण ने मेघा और हर्षिता की तरफ देखते हुए कहा, मेघा हर्षिता तुम दोनों मिलकर बाकी सब कुछ देख लेना, और अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, मैं इन सबको अपने तरीके से समझाऊंगा। करण की धमकी भरी बातें सुनकर वो सारी लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। करण की बात सुनकर उन दोनों को भी समझ आ गया कि ये इवेंट उनकी आपसी लड़ाई या मनमुटाव से कहीं आगे था और उसमें उन सभी को अच्छा परफॉर्म करना था। करण ने अपने हिसाब से उन लोगों को समझाया और फिर हर्षिता की तरफ बढ़ते हुए कहा, हर्षिता तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और तुम्हारे साथ इनमें से कोई ऐसा बर्ताव करे तो बताना मुझे। ठीक है, मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी करण भाई। अलग साइड जाकर करण से बात करते हुए हर्षिता ने कहा। करण ने उसे समझाते हुए कहा, देखो हर्षिता, और हो सके तो तुम अपने सारी चीजों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन लड़कियों पर कोई भरोसा किया जा सकता है। जब आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, जल रही हैं, फिर तुम तो मेन मॉडल हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए बस थोड़ी सी केयरफुल रहना और अपनी आंखें खुली रखना। करण ने उसे एक अच्छे और जिम्मेदार भाई की तरह समझाया। हर्षिता ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच भाई, आप है ना मेरे लिए यहाँ, फिर मुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर्षिता उस पर बहुत भरोसा करती हुई बोली। हर्षिता की बात सुनकर करण तसल्ली से मुस्कुराया। वो दोनों आपस में बात ही रहे थे कि कॉल पर बात खत्म करके रुद्र भी वहां आ गया। क्या हुआ, क्या बात चल रही है? करण और हर्षिता को एक साथ खड़े देखकर उसने जानबूझकर उनके बीच आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस करण मुझे कुछ समझा रहा था, हर्षिता ने थोड़ा स्माइल करके करण की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें हमेशा सारी बातें समझाने क्यों पड़ती हैं, तुम्हें खुद से कुछ समझ क्यों नहीं आता? रुद्र ने इतना कहा और वहां से आगे बढ़ गया। हर्षिता और करण दोनों को समझ नहीं आया कि रुद्र ने इस तरह से रूड बिहेव क्यों किया। उसके जाते ही पीछे खड़ी हर्षिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसका नाम रुद्र नहीं मिस्टर रूड होना चाहिए। हर्षिता की बात सुनकर करण भी हंसने लगा और बोला, वैसे ये नया नाम भी रख सकती हो, लेकिन अभी मेरे साथ तो ठीक ठाक ही बिहेव किया। नहीं, मुझे भी थोड़ा रूड तो लगा ही था। करण भी उसके बारे में सोचता हुआ बोला। फिर हर्षिता ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर उससे बात करने के बाद करण भी वहां से चला गया। वो चाहता था कि सब कुछ ठीक से हो जाए, इसलिए वो स्टूडियो के आसपास बैकस्टेज ही टहल रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी कुछ गड़बड़ करे। इसके अलावा वहां पर अभी ज्वेलरी भी आनी थी जो रात के इवेंट में यूज होनी थी। वो सारी ज्वेलरी बहुत डिजाइनर और महंगी थी, इसलिए उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी करण को दी गई थी। उसके साथ दो सिक्योरिटी गार्ड ज्वेलरी बॉक्स लेकर आने वाले थे और उसे हर्षिता के सेपरेट ग्रीन रूम में रखवाया जाना था, क्योंकि हर्षिता को अलग से ग्रीन रूम दिया गया था जहां पर उसके अलावा कोई और मॉडल रेडी होने के लिए नहीं आ सकती थी और वो हर्षिता पर भरोसा करती थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था। वहां पर आते ही वो पूरी ज्वेलरी हर्षिता के रूम में भिजवा दी गई थी। हर्षिता के साथ उनका मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पर था और मेघा वहां पर आ जा रही थी। उनके अलावा सिर्फ करण और रुद्र को वहां पर आने की परमिशन थी और दो सिक्योरिटी गार्ड भी रूम के बाहर खड़े थे। इसके अलावा उन लोगों ने किसी को भी रूम में जाने की परमिशन नहीं दी थी। इसी बीच करण को पता चला कि शिविका वहां पर आ चुकी है, तो वो उससे मिलने के लिए हॉल की तरफ जाने लगा, क्योंकि इधर का काम लगभग पूरा हो गया था। जो भी बचा था उसके लिए करण ने बाकी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे और थोड़ी देर में आकर वो दोबारा से ये सारे काम चेक कर लेगा। लेकिन अभी उसका शिविका से मिलने का, बात करने का और ये पूछने का मन हो रहा था कि वो इतनी देर से क्यों आई। ये सोचकर वो थोड़ा एक्साइट होता हुआ वहां बढ़ा, क्योंकि उन दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया था। करण जब वहां आया तो उसने देखा कि हॉल में अभी अभी शिविका आई है और उसके साथ उसके पुराने मैनेजर दिनेश अंकल भी थे और उसके अलावा शिविका के साथ एक बॉडीगार्ड भी था।
वो इधर उधर देखते हुए उन सब से काम के बारे में पूछ रही थी। करण एकदम से वहां आते हुए बोला, यस मैम, मैंने पर्सनली सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शिविका अकेली नहीं थी इसलिए करण ने प्रोफेशनली बात की, लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जतिन भी वहां आ गया और वो थोड़ा घबराया हुआ था। जतिन ने शिविका को बताते हुए कहा, मैम वो मिस्टर मेहरा वो जाने कब से आकर बैठे हुए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप पहले उनसे। जतिन की बात सुनकर शिविका ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गया। और फिर शिविका करण की तरफ देखते हुए बोली, करण तुम यहाँ पर रुको, मैं साहिल से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो जतिन के साथ वहां से आगे बढ़ी। करण ने उसके पीछे आते हुए कहा, नहीं मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों करण नहीं चाहता था कि शिविका साहिल से अकेले में मिले, इसीलिए वो भी उसके साथ आने को हुआ। लेकिन शिविका ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ पर ही देखो, अगर हम दोनों वहां पर चले जाएंगे तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं होगा ठीक से, और तुम तो जानते ही हो सब अपने काम में कितनी ढील देते हैं अगर कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता है तो। शिविका सारे काम को सुपरवाइज करने को लेकर करण या रुद्र पर ही भरोसा करती थी, इसीलिए उसने करण को वहां पर रुकने को कहा। साथ ही उसे लगा कि साहिल से वो बस 5 मिनट में मिलकर वापस आ जाएगी, क्योंकि अब तक दोपहर हो चुकी थी और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। ऐसे में साहिल से मिलना उसे काफी इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन वो पहले से ही वहां पर आकर बैठा हुआ था इसीलिए वो उसे अभी मना भी नहीं कर सकती थी। उसकी बात मानकर करण वहां पर ही रुक गया और शिविका जतिन के साथ वीआईपी मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसने रास्ते में जतिन से पूछा, उसे यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी ऐसे लास्ट मोमेंट पर, क्या वो अभी से आ गया है इवेंट के लिए। शिविका की इस बात पर जतिन ने कहा, पता नहीं मैंने भी उसे यही कहा था, तो उसने कहा कि अभी वो बस देखने आया है सब कुछ ठीक है या नहीं और आपसे मिलने भी शायद क्रमशः।